स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके पास में आते हैं पिता। प्रभु आपका वचन कहता है, न बल से, न शक्ति से, न सामर्थ्य, न ज्ञान से, पर आपकी आत्मा के द्वारा। प्रभु हमें आपकी आत्मा की आवाज़ को सुनने के लिए हमारे कानों को, हृदयों को खोले प्रभु। प्रभु अभिषेक दीजिए पिता, ताकि हम जो कुछ यहाँ पर सुने और बांटे वो आपकी आत्मा के द्वारा ठहरे और आपकी महिमा के लिए और हमारे प्रोत्साहन के लिए होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन।
Actually, was blessed with one of the kids' verse in 1 John 3:9.
और पहला यूहन्ना तीसरा अध्याय नौ वचन, एक बच्चे ने जैसे एक वचन को बताया, उससे मैं बहुत आशीषित हुआ।
It's related to what I'm sharing.
और जो मैं आज बांटने जा रहा हूँ, उससे वो संबंधित है।
It says, "No one who is born of God practices sin, because his seed abides in him, and he cannot sin, because he is born of God."
जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप नहीं कर सकता।
And verse 10, by this the children of God and the children of the devil are obvious. Anyone who does not practice righteousness is not of God, nor the one who does not love his brother.
और इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता।
So it says here very clearly that no one who is born of God practices sin.
बहुत ही साफ रीति से यहाँ पे लिखा है कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता।
In the next line he says he cannot sin.
और उसके अगले लाइन में भी लिखा है कि वह पाप कर ही नहीं सकता।
If you think about it, it is absolutely true.
और यदि आप इसके बारे में सोचे तो यह वास्तव में सच है।
Because if you are born of God, that means Jesus lives within us.
यदि आप परमेश्वर से जन्मे हैं, उसका मतलब यीशु मसीह आपके भीतर रहता है।
But still we continue to practice sin.
लेकिन फिर भी हम पाप के अंदर ही पाप करते रहते हैं।
If we go to Ephesians chapter 4,
इफिसियों 4 अध्याय में हम यदि जाएं,
we look Paul here talking to the people of Ephesians.
और पौलुस यहाँ पे इफिसियों के जो लोग हैं उनसे बातें करते हुए हम देखते हैं।
And he's talking about a lot of, you know, sin that we need to put away.
और बहुत सारे ऐसे पाप हैं जिनको हमारे जीवन से दूर करने के बारे में वो बात करता है।
In verse 17, he says, "Don't walk like the Gentiles walk."
और वो कहता है कि जैसे अन्य जाति लोग चलते हैं वैसे तुम जीवन मत जियो।
That means don't walk like everybody else.
और जैसे हमारे आसपास के लोग जो चलते हैं या जीते उस प्रकार हम न जिए।
Yesterday I was talking to my cousin.
और कल मैं अपने एक कजिन भाई से बात कर रहा था।
And I was talking like, I was giving him the gospel and teaching him, and I was like, why are you still, continuing to do the same things which you don't agree to?
और मैं उसके ये सुसमाचार या प्रभु की बातों से बता रहा था कि जिस बातों से तू सहमत नहीं होता वो पाप भरी बातों को तू क्यों करते जाता है?
He said this. He said, I'm just going with the flow.
और उसने ये कहा कि मैं जो प्रवाह जो है उसके साथ मैं आगे बढ़ते जाता हूँ।
Many of the times even we go through the flow.
और कई बार हमारे साथ भी होता है कि हम जो प्रवाह जो होता है उसी के साथ बहते जाते हैं।
Whatever happens in the world, why not? Let's go with the flow.
और जो भी संसार में होता है उसी प्रवाह के साथ साथ हम बहते जाते हैं।
But here Paul saying that we cannot walk like the Gentiles walk.
लेकिन पौलुस यहाँ पे कहता है कि अन्य जातियों के समान हम जीवन को नहीं जी सकते।
In verse 25.
और उसके 25 वचन में लिखा है।
It says, therefore, laying aside falsehood, speak truth each one of you with his neighbor, for we are members of one another.
और इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं।
Laying aside falsehood, that means do not speak lies.
और यहाँ पर लिखा है कि झूठ बोलना हमको छोड़ना है।
How many times, do we speak lies?
और कितनी बार होता है कि हम झूठ बोलते हैं?
It's good to judge ourselves.
हम अपने आप को जांचे।
Many times I've come in situations where, a person is sitting next to me and the phone rings and they tell me to take the phone and tell me, hey, tell him I'm not here.
और कई बार होता है कि मेरे पास में कोई व्यक्ति बैठा, उसका फोन बजता है, वो मुझे उठाकर कहने को बोलता है कि उसको ऐसा बोल दे कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ फोन पर।
Or if you're on the house, somebody comes, tell them I'm not here.
और कोई घर पर आता है तो हम उसको बोल दे, ये कहने के लिए बोलते कि मैं घर पे नहीं हूँ।
What do you do in this situation?
ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे?
Do you stand for the truth?
कि आप सच्चाई के लिए खड़े रहेंगे?
Or you just speak lies?
और कि फिर आप झूठ ही बोल देंगे?
We need to judge ourselves.
हमें अपने आप को जांचना है।
And there was one thing which really blessed my heart.
और एक चीज से मुझे बहुत ही आशीष मिली।
When Peter was denying Jesus.
जब पत्रस जो है यीशु मसीह का इनकार कर रहा था।
In Matthew.
मत्ती.
Matthew 26.
मत्ती उसका 26 अध्याय।
verse 70. But he denied it before them all, saying, I do not know what you are talking about.
और 70 वचन में लिखा है उसने सबके सामने कहते हुए इनकार किया मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है.
Verse 74, then he began to curse and swear, I do not know the man.
और वहां पे वो धिक्कारने लगे और मैं उस मनुष्य को नहीं जानता ऐसा पतरस ने कहा.
Many, and believe it or not, he was that same day and the previous night with Jesus. How can he say, I do not know that man?
और उस रात उसके पहले के दिन वो पतरस यीशु मसीह के साथ था और कैसे वो कह सकता है कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता?
He ate dinner with Jesus.
और उसने इनकार किया उसने यीशु मसीह के साथ भोजन किया था.
And after some time he says, I do not know the man.
और उसके कुछ समय बाद वो कहता है मैं उस मनुष्य को नहीं जानता.
Many times I also come in that situation where, you know, I know the truth and I say, you know, I don't know.
और कई बार मैं भी ऐसी हालातों में आता हूँ जहाँ मैं सत्य को जानता हूँ लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि मैं नहीं जानता कुछ.
Just to save my skin.
और मैं अपने आप को केवल बचाना चाहता हूँ इसके लिए.
I'll say, you know, I don't know. I don't know what you're talking about.
और मैं ये बड़ी आसानी से कहता हूँ मैं नहीं जानता कि आप क्या बात कर रहे हैं.
So we got to put away all lies.
और हर एक झूठ को जो है उसको हमको निकाल देना है.
And the next verse says, all put away all anger.
और वहाँ पे लिखा है कि सारे क्रोध को हमको दूर कर देना है.
Verse 29 in Ephesians 4 verse 29, let no unwholesome word proceed from your mouth.
और Ephesians 4:29 में लिखा है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले.
Verse 31, let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you along with all malice.
और 31 वचन सब प्रकार की कड़वाहट प्रकोप क्रोध कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए.
We got to look at each one of these words, you know, in detail.
और ये सारे जो वचन यहाँ पे शब्द जो लिखे गए उस पे बहुत ही विस्तार से इसको अंदर देखना है हमको.
We got to put away all bitterness.
और सारी कड़वाहट को हमारे जीवन से दूर करना है.
You know, when somebody is talking, we speak harshly to them.
और कोई हमसे यदि बात करता है तो बड़ी कठोरता के साथ हम उनको उत्तर देते हैं.
Or we have a bitter vibe towards somebody.
और कई बार उसको कठोरता के साथ वो हमारी विचारधारा होती है.
You know, in verse 30 it says, Do not grieve the Holy Spirit of God.
और 30 वचन में लिखा है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो.
So all these things we have heard here, you know, we still continue to practice and it grieves God, it hurts God.
और ये सारी चीजें सुनने के बाद यहाँ पर हम अपने जीवन के अंदर इन्हीं बातों के अंदर हम व्यवहारों में इसी पापों को करते जो परमेश्वर को शोकित करता है.
In the Living Bible, the same verse says, Do not let the Holy Spirit to sorrow.
और यहाँ पे एक लिविंग अनुवाद में लिखा गया है कि पवित्र आत्मा को आप दुख न दे.
So many times, you know, we hurt God in so many ways.
बहुत बार हमने परमेश्वर को बहुत ही अलग-अलग तरीकों के द्वारा सुना है.
He gets hurt because he loves us.
और वो इसलिए शोकित होता है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है.
It's just like your earthly father and mother.
और जैसे जैसे तुम्हारे माता पिता जो हमारे माता पिता जो संसार में होते हैं.
If you keep disobeying them or you keep talking harshly to them, they'll get hurt.
और यदि आप बहुत ही कठोरता के साथ उनकी बातें करते जाएंगे और आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे तो वो उनको चोट पहुंचेगी या दुख पहुंचेगा उनको.
So the same way we are God's children.
और उसी प्रकार हम परमेश्वर की संतान है.
You know, we are born again and we don't have to hurt God.
और हम नया जन पाए हुए लोग हैं हमें परमेश्वर को चोट पहुंचाने की जरूरत नहीं है.
And in verse 24:20, you know, Paul saying this is not the way you learn Christ.
और यहाँ पे 20 वचन में वह पौलुस कहता है कि तुम इस प्रकार मसीह की ऐसी शिक्षा को नहीं प्राप्त कर सकते.
There's a way Christ did things over here.
और यहाँ पर मसीह ने कुन चीजों को किस प्रकार से किया है.
You got to learn Christ in a different way.
और मसीह के बारे में एक अलग रीति से आपको सीखने की जरूरत है.
We know Matthew 11 verse 28 and 29.
और मत्ती 11:28 को और 29 को हम जानते हैं.
We know that verse very well.
और उस वचन को हम बहुत ही अच्छे से जानते हैं.
It says, "Come to me, all who are weak and heavy laden."
वहाँ कहता है सारे बोझ से दबे लोगों तुम मेरे पास आओ.
And I will give you rest.
और मैं तुम्हें विश्राम दूँगा.
The next verse says, "Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart."
और 29 वचन में लिखा है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ.
So what do we have to learn from Jesus?
और हमें यीशु से क्या सीखने की जरूरत आज है?
It says clearly says in Matthew 11 verse 29 that we have to learn the gentleness and humility of Jesus.
और यहाँ पे लिखा है कि उसकी नम्रता जो है उसको हमको सीखना है उसकी दीनता को सीखना है.
How we dealt with people.
हम कैसे लोगों के साथ व्यवहार करते हैं.
Many times with compassion.
और बहुत बार तरस के साथ.
Many in Matthew 26 when Peter was denying it says the same passage in Luke says Jesus turned and looked towards him.
और मत्ती 26 के अंदर हमने जैसे देखा पत्रस इनकार किया वैसे मत्ती में इसी भाग में लिखा है कि यीशु मसीह ने मुड़कर उसको देखा.
So when Jesus turned and looked at him, what kind of face you think Jesus must have shown towards Peter?
और जब यीशु ने पतरस की ओर मुड़कर देखा, तो आप क्या सोचते कि किस प्रकार का चेहरा लेकर यीशु मसीह ने पतरस की ओर देखा होगा?
Will it be a frown?
और क्या वो डराने वाला डरावना होगा?
You Peter.
और उसने ऐसा सोचा कि क्या पतरस तूने ऐसा किया?
You knew me all along. You ate dinner with me and still you denied me.
कब से मुझको जानता था, मेरे साथ तूने भोजन किया लेकिन फिर भी मेरा इनकार कर दिया?
I don't think so.
मुझे ऐसा नहीं लगता।
He looked at him with compassion and forgiveness.
और यीशु मसीह ने उसको बहुत ही तरस के साथ और उस माफी के साथ उसको देखा।
That amazing, just a look of forgiveness can change a person.
और यहाँ पर देखे कितनी अद्भुत बात है कि एक माफी और तरस से भरा हुआ एक उसको देखना ही व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है।
That's what we need to learn. We need to learn Christ in this way, a way of forgiveness.
और इसी प्रकार हमको मसीह के बारे में सीखना है, ऐसा मसीह जो 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 माफी देने वाला है।
That even when we look at a person, it should be out of love.
और यहाँ तक कि हम किसी मनुष्य को देखते हैं तो वो प्रेम के द्वारा होने पाए।
And we come back to Ephesians 4.
और हम इफिसियों 4 में वापस लौटते हैं।
Verse 32.
उसका 32 वचन।
Paul saying, you know, leave those other things, put away those other things, and now be kind to one another, tender-hearted, forgiving each other, just as God in Christ also has forgiven you.
और 32 वचन मिले कि दूसरे पर कृपालु करुणामय, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो।
You know, there's a manner in we have to walk.
और एक तरीका है जिसके अंदर जिसके जिसके अंतर जिसके द्वारा हमको चलना है।
Where Paul says it in Ephesians 4 verse 1, there's a walk in a manner worthy of the calling which you have been called.
जैसे पौलुस इफिसियों 4:1 में कहता है कि जिस बुलाहट के तुम बुलाए गए उसके योग्य चाल तुम चलो।
He says the same thing to the Philippians in Philippians 1:27.
और फिलिप्पी 1:27 के अंदर भी वो फिलिप्पियों से एक ही उसी प्रकार वो कहता है आगे।
Only conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ.
और परमेश्वर के सुसमाचार की योग्य चाल तुम चलो।
And also he tells them to the Thessalonians.
और थिस्सलुनीकियों को भी इसी प्रकार वो कहता है।
1 Thessalonians 1:12. So that you would walk in a manner worthy of the God who calls you into his own kingdom and glory. 2:12.
दूसरा माफ करना, दूसरा अध्याय 12 वचन, उसमें इस प्रकार लिखा है कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो और तुम्हें अपने राज्य और महिमा में जो बुलाता है।
एंड God speaking to us also, saying that walk in a manner worthy of your calling.
और परमेश्वर उसी प्रकार हमसे भी बात करता है कि जिस बुलाहट से उसने हमको बुलाया है उसके योग्य हम जिए।
1 John 2:6 says, if you consider yourself as a Christian, walk as Christ walked.
और पहला यूहन्ना 2:6 में लिखा हुआ है कि जो कोई कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, तो उसको चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था।
Even in our day-to-day lives, brothers and sisters, we have to walk like Jesus walked.
और हमारे प्रतिदिन के जीवन के अंदर भाई और बहनों, जैसा यीशु मसीह ने चला वैसा ही हमको भी चलना है उसकी चाल।
Yes, and we have to put away all other sins.
और सारे पापों को हमको दूर करना है।
There's a cleansing that happens within us.
और हमारे अंदर एक शुद्धिकरण होता है।
We know the verse 1 John 1:9.
और पहला यूहन्ना 1:9 में इस वचन को हम जानते हैं।
If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us from all unrighteousness.
यदि हम अपने पापों को मान ले, वो हमारे सारे पापों को क्षमा करने, सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है।
So God is faithful to clean us from all unrighteousness.
और परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी सारे अधर्म से हमें शुद्ध करने के लिए।
And there's a cleansing that we have to do too. That is in 2 Corinthians 7:1.
और दूसरा कुरिन्थी 12:7 के अंदर एक दूसरे प्रकार का शुद्धिकरण है जो हमारे भीतर हमें खुद करना है।
This cleanses ourselves from all defilement of the flesh.
और सारी जो शरीर की मलिनता है उससे हमें अपने आप को शुद्ध करना है।
The anger, the hatred, the malice, the jealousy.
और जो कड़वाहट है या क्रोध है।
The bad thoughts we have.
जो बुरे विचार जो हमारे अंदर होते हैं उससे।
You know, we have to cleanse ourselves from all these things.
और इन सारी चीजों के इन चीजों से हमें अपने आप को शुद्ध करना है।
It's like, you know, taking a detox diet, going on a detox diet.
और जैसे कि detox diet होता है उस प्रकार।
You know, I suffer from psoriasis.
एक psoriasis से मुझे उससे वो है मुझे।
And sometimes when I'm not on my diet, you know, I get flare-ups.
और जब मैं जब
मेरे show on my skin.
और जब मैं अपने उस diet को नहीं लेता हूँ, तो मेरे वो चमड़ी के ऊपर दिखने लगता है।
And whenever I get these flare-ups, you know, it's very itchy, it's very ugly.
और जब भी ऐसा मेरी चमड़ी के अंदर ऐसा कुछ होता है तो बहुत ही वो खुजली और देने वाला होता है।
And whenever I get these flare-ups, you know, I am so quick, you know, to go on a detox diet.
और जब भी ऐसी तकलीफ मुझे मेरी चमड़ी के ऊपर होती है, तभी मैं detox वो diet जो होता है, उसके ऊपर मैं चले जाता हूँ तुरंत.
And the diet consists of all sorts of things. I'll take, you know, things that probably people hate it over here, like celery juice, palak juice.
और बहुत सारे ये डाइट जो होता है वो शायद बहुत सारे लोग होंगे उसको बहुत ही नफरत करते होंगे, जो पालक है उसका जूस या अलग अलग प्रकार का.
Yeah, I'll even have, you know, things like, you know, just lime and ginger, which is horrible in taste.
और मतलब जो लहसुन है या फिर केवल लींबू है या ऐसे जो जो स्वाद में बिल्कुल अच्छा नहीं होता, ऐसी चीजों को खाना.
Because I want to get rid of it. I want to clean my system.
और इसलिए कि मैं अपना जो सिस्टम है उसको क्लीन करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस प्रकार के भोजन को लेता हूँ.
I was just wondering if I take my, if I, when I get a flare up, I take this thing. You know, so quickly, I'm so quick to do a detox diet.
और जैसे मैं अपने शरीर के लिए देखता हूँ कि जब कभी ऐसे मुझे ऐसी तकलीफ होती है तो तुरंत उस डाइट को लेने में कितना जल्द मैं ले लेता हूँ उसे.
What about spiritually?
लेकिन मेरी आत्मिक बात, आत्मिक जीवन के बारे में क्या?
Am I that quick, you know, when there's a bad thought or there's a jealous thought towards a brother or there's hatred in my heart? Am I that quick to detox it?
और जब गंदा विचार होता है किसी के प्रति, एक जलन से भरा हुआ विचार होता है, तो क्या मैं बहुत ही जल्द उसके साथ व्यवहार करता हूँ ऐसे प्रकार के व्यवहार के लिए?
That's a very slow process.
और ये बहुत ही धीमा ये प्रक्रिया ये होता है.
That's where I have to learn.
और यहाँ पर ही मुझे सीखना है.
That my spiritual life is more important than my physical.
और मेरी जो शरीर है उससे बढ़कर मेरी आत्मिक जीवन महत्वपूर्ण है.
Whenever all these sins come in, I should be quick to take a detox recipe and quick to ask forgiveness, even in my thought life.
और जब कभी ऐसे विचार यहाँ तक कि मेरे विचारों के अंदर भी आते, ऐसे पाप आते, तुरंत उस डिटॉक्स डाइट या तुरंत उस माफी को मुझे परमेश्वर के पास जाकर मांगना है.
And I have to clean my heart completely.
और मुझे मेरे हृदय को पूरी तरह से साफ करना है.
Yes, God is faithful. He will clean it for me.
और यहाँ परमेश्वर विश्वास योग्य, वो मेरे लिए उसको साफ करेगा, शुद्ध करेगा.
I shouldn't stop there.
और मुझे वहाँ पर रुकना नहीं है.
You know, many times when we clean things, we usually empty things out.
और कई बार जब हम चीजों को साफ करते हैं तो उसको हम खाली कर देते हैं.
Yeah, but emptying, leaving it empty, you know, is not nice.
और उसको खाली कर देना या उसको खाली छोड़ देना वो ठीक नहीं है.
Because I'll tell you what Jesus says in Matthew 12:44.
मत्ती 12 में यीशु मसीह ने जो कहा, मैं आपको बताना चाहता हूँ उसका 44. मत्ती 12
Okay, we'll read from verse 43. Now when the unclean spirit goes out of a man, it passes through waterless places seeking rest and does not find it.
और जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती और पाती नहीं.
Then it says, I will return to my house from which I came, and when it comes, it finds it unoccupied, swept and put in order.
और तब वह कहती, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौट कर उसे सूना झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है.
सेम थिंग लाइक माई लाइफ.
और वही मेरे जीवन के साथ है.
ओके, आई आस्क गॉड फॉर फॉरगिवनेस, ही हैज क्लीन्ड मी.
यीशु मसीह से मैंने मेरे माफी के लिए मांगा, उसने मुझे शुद्ध किया.
आई हैव केप्ट इट टाइडी.
मैंने उसको बहुत ही साफ रीति से रखा
हुआ है. एंड पुट इन ऑर्डर.
मैंने उसको बहुत ही क्रम में रखा हुआ है.
बट इन वर्स 45.
लेकिन उसके आगे के वचन में देखते हैं.
देन इट गोज एंड टेक्स अलोंग विद इट 7 अदर स्पिरिट्स मोर विकेड देन इटसेल्फ एंड देन गो इन एंड लिव देयर एंड द लास्ट स्टेट ऑफ द मैन बिकम्स वर्स देन द फर्स्ट.
और तब वह जाकर अपने से और बुरी सात आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें पैट कर वहां वास करती है और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है.
सो फर्स्ट, यू नो, आई the devil was expelled out from my life. God cleaned my life. He forgave all my sins.
और सबसे पहले जब मेरे जीवन में से पाप मैंने कबूल किया और उन सारे पापों को दूर कर दिया, परमेश्वर ने मेरे हृदय को शुद्ध किया.
And my life is now, you know, a clean state and empty state.
और मेरा जो जीवन है अभी पूरी तरह से साफ हो चुका और खाली हो चुका है.
And most of the time, you know, we are satisfied with that.
और बहुत बार हम ऐसे जीवन से बहुत ही संतुष्ट हो जाते हैं.
We are satisfied that Christ has forgiven my sins.
और यहाँ तक संतुष्ट हो जाते हैं कि ये मानकर कि यीशु मसीह ने मेरे पापों को क्षमा किया है.
And we don't seek for anything more.
और उसके बाद हम और कुछ खोजने की आशा नहीं रखते.
But the devil is very cunning.
लेकिन जो शैतान जो है बहुत ही चालाक है.
He knows if that house is unoccupied with something, he's going to come back.
और शैतान जान जाता है कि इस घर में अभी कोई आया नहीं है, तो वो वापस लौटने की कोशिश करता है.
So we got to fill that house with something.
और उस जो खाली जो घर है या हृदय, उसको हमको भरने की कोशिश करनी है.
Yes, we need to fill that house with the Holy Spirit.
और वो घर को हमें पवित्र आत्मा से भरना है.
When God cleans us, we need to ask God for the Holy Spirit.
और जब परमेश्वर हमको शुद्ध करता है, तब हमें पवित्र आत्मा को मांगना है कि वो हमें भरे.
so that our state won't be as worse than the first.
और इसके द्वारा जो हमारी अवस्था थी तो पहले के समान बुरी ना हो जाए.
Yes, there was a cleaning, there was an emptying, but now comes the filling also.
और यहाँ पे शुद्धिकरण था, वहाँ पर खाली होना भी था, लेकिन यहाँ पर भरना भी साथ में आता है.
We read in Acts that you know they always were filled with the Holy Spirit.
और प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं कि वे हमेशा पवित्र आत्मा से भरे हुए रहते थे.
Yes, that's what we need to do.
और यही हमको भी करना है.
In Ephesians 5 verse 18.
Ephesians 5:18.
And do not get drunk with wine, for that is dissipation, but be filled with the Spirit.
दाक्रस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ.
So it's so important, it's so significant to, you know, be filled with the Holy Spirit.
ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण बने रहे.
Because only once we are filled with the Spirit, then we can produce fruits of the Spirit.
और क्योंकि जब हम पवित्र आत्मा से ही भरेंगे, तभी हम पवित्र आत्मा के फलों को हमारे जीवन में ला सकेंगे.
If we are filled with Jesus Christ, Jesus' Spirit, then we can show gentleness.
और जब हम यीशु मसीह से भरे रहेंगे, उसके जीवन से भरे रहेंगे, तो हम कोमलता को दिखा सकते हैं.
Patience, love, kindness.
धीरज, प्रेम को दिखा सकते, दया को दिखा सकते हैं.
The Spirit will produce its fruit.
और वो पवित्र आत्मा है जो उसके फलों को हमारे जीवन में दिखाएगा और लाएगा.
But if you just leave it empty, you know what the state is going to be.
और यदि हम उसको खाली ऐसे ही छोड़ दे, तो आप जानते तब क्या होगा ऐसी अवस्था में.
I was just thinking that, you know, I don't want to leave my life empty.
और मैं अपने बारे में सोचता हूँ कि प्रभु, मैं अपने जीवन को इस प्रकार खाली नहीं छोड़ना चाहता हूँ.
All the time asking God, you know, forgive this sin, forgive that sin.
हर समय इस प्रकार मांग, ये परमेश्वर से माफी मांगना, प्रभु ये पाप को माफ कर, वो पाप को माफ कर.
God will forgive, he will.
और परमेश्वर जरूर माफ करेगा.
But there's something more than that.
लेकिन उससे बढ़कर भी कुछ और है.
That he can fill us up with the Spirit so we don't commit those sins again.
और वो हमें अपने पवित्र आत्मा से इस प्रकार भरे ताकि उन पापों को हम और दोहराए नहीं या करें नहीं.
We'll read in 2 Corinthians 13.
दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय.
Paul speaking to the Corinthians here.
Paulus यहाँ पर कुरिन्थियों के लोगों से बात करता है.
Verse 3.
उसका तीन वचन.
Since you are seeking for proof of the Christ who speaks in me and who is not weak towards you but mighty in you.
और क्योंकि तुम में तो इसका प्रमाण, तुम तो इसका प्रमाण चाहते हो कि मसीह तुम मुझ में बोलता है जो तुम्हारे लिए निर्बल नहीं परंतु तुम में सामर्थी है.
So you read the last line, it says but mighty in you.
लेकिन उसका अंतिम भाग उस वचन का पढ़े, क्योंकि वो तुम्हारे, तुम में सामर्थी है.
God's Paul's talking about the Holy Spirit here.
और पौलुस यहाँ पर पवित्र आत्मा के संबंधित बात कर रहा है.
Christ living in me is not weak.
और परमेश्वर मेरे अंदर रहना, मतलब वो निर्बलता की कोई बात नहीं है.
But is mighty.
लेकिन वो तो तुम में सामर्थ्य है.
Whenever temptations and trials come, you know, I have Christ living in me who is mighty.
और जब भी परीक्षा है, परीक्षणों को सामना करता है, जब यीशु मसीह मुझ में रहता है, उसका मतलब कि वो मुझ में सामर्थ्य है.
And in the next verse it says, because of the power of God directed towards you.
और वहाँ पे लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा जो हमारी ओर हुई, उसके द्वारा.
So always remember that whenever we ask God for the Holy Spirit, you know, we asking for a mighty power within us.
और जब भी हम इस चीज को याद रखें, जब भी हम पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में भरने के लिए मांगते हैं, उसका मतलब हम उसकी बहुत ही अद्भुत और बड़ी सामर्थ को मांग रहे हैं.
And in verse 5 it says, test yourself to see if you are in the faith.
और अपने आप को परखो, पांच वचन में, कि विश्वास में तुम हो या नहीं.
Examine yourselves.
अपने आप को जांचो.
Or do you not recognize this about yourselves that Jesus Christ is in you?
और क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है?
Unless.
और नहीं तो.
Indeed, you failed the test.
तुम जांच में निकम्मे निकले हो.
So we got to test ourselves.
हमें अपने आप को जांचना है आज.
See if Jesus Christ is in us.
और यीशु मसीह मुझ में है या नहीं?
And when temptations and trials come.
और जब परीक्षण आते हैं, परीक्षाएं होती हैं, तभी.
See if that. We have to call out to God, you know, for that power.
और तब ऐसे समय में हमें परमेश्वर को पुकारना है उस सामर्थ को प्राप्त करने के लिए.
And it says, unless indeed you fail the test, that means the Holy Spirit is not with us.
और तुमने जांच में तुम निकम्मे निकले हो, उसका मतलब कि पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर नहीं है.
When temptations, when bad thoughts come across our way, if we, you know, indulge in sin.
और जब बुरे विचारों का परीक्षण आता है और हमें उस गंदे विचारों के अंदर हम जाते हैं, तभी.
Or there's a thought of jealousy and results to hatred.
और ऐसा एक जलन से भरा हुआ हमारे अंदर विचार आता है और उसके बाद हम बहुत ही एक क्रोध एक ऐसे ऐसी कड़वाहट से भर जाते हैं.
इट्स क्लियर दैट जीसस क्राइस्ट इज नॉट इन यू एंड वी हैव फेल्ड द टेस्ट.
और ये साफ रीति से दर्शाता है कि यीशु मसीह आपके भीतर नहीं है और हमने उस परीक्षा के अंदर हम असफल हो चुके हैं.
इन साम्स 34
भजन संहिता 34 अध्याय
It says in verse 17,
17 वचन,
The righteous cry and the Lord hears and delivers them out of all their troubles.
धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है.
Verse 19, Many are the afflictions of the righteous.
19 में धर्मी पर तो बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है.
But the Lord delivers him out of them all.
परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है.
You see, there are so many trials and so many temptations that come across our way.
और यहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी विपत्तियाँ परीक्षाएं हमारे रास्ते में आ सकती है.
But what do we do?
हम क्या करें उसमें?
When temptation comes, you know, even in our thought life.
और यहाँ तक कि हमारे विचार के जीवन के अंदर जब परीक्षण आते हैं.
A bad thought, a lustful thought probably.
और हो सकता है कि एक वासनाओं से भरे हुए विचार आ सकते हैं.
We got to cry out to God.
हमें वहाँ पर परमेश्वर को पुकारना है.
And he will deliver us from all of them.
और परमेश्वर ही है जो हम उन सारी चीजों से छुड़ाएगा.
The Lord will deliver us.
परमेश्वर ही पर प्रभु हमको छुड़ाएगा.
In 1 John 4:4.
पहला यूहन्ना 4:4.
This is an amazing verse. It says, "Greater."
बहुत अद्भुत वचन है.
Greater is he who is in me.
पहला यूहन्ना 4:4. क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है.
It says, greater is he who is in you that he who is in the world. So you are from God, little children, and have overcome them.
ये बालकों तुम परमेश्वर को और तुमने उस पर जय पाई है.
We can overcome all these sins, brothers and sisters.
भाइयों और बहनों सारे पापों के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं.
Because we have a Jesus Christ and the Holy Spirit who is in us.
हमारे पास यीशु मसीह और पवित्र आत्मा है जो हमारे भीतर है.
And he is greater than the devil living in this world.
और इस संसार में जो शैतान है उससे बढ़कर यीशु मसीह जो महान है.
Let any temptation, any trial come our way.
और कोई भी परीक्षा या परीक्षण हमारे रास्ते में आने.
If the Holy Spirit is in us, we will stand strong.
और यदि पवित्र आत्मा हमारे भीतर है तो हम वहाँ मजबूती से खड़े रह सकेंगे.
May God help us.
प्रभु हमारी सहायता करें.
Thank you, Johnny. Very encouraging, and even that the same thing touched me when the memory verse I heard this morning from 1 John chapter 3, verse 9. I was telling Brother Manish sitting at the back, this is what God is speaking to us, and this is what is needed today. Very much, बहुत आज का जो जो वचन जो भाई जॉनी ने भी बांटा और जो मेमोरी वर्स जो था जब मैंने सुना मेरे को भी वो बहुत मेरा दिल को भाया और मैंने सोचा कि ये बहुत ही ज़रूरी है. जैसे हमने पहला योहन्ना का 3:3 में से पढ़ा था 9. वहाँ पे एक ये है कि परमेश्वर का For God's seed abides in him. परमेश्वर का जो बीज जो है उसके अंदर है. आज we had a nice story also put up this morning by Brother Kiran. किरण ने भी एक अच्छा एक कहानी आगे रखा था. तो उसमें भी एक बीज के बारे में बात की. It was spoken about the seed. And किस तरीके से वो उसके ऊपर पानी डालता है, उसके ऊपर काम करता है. That boy is working on that seed. Watering it, taking care of it, and not losing his faith. वो अपना जो विश्वास को छोड़ता नहीं है, डगमगा मतलब उसके अंदर कोई डगमगाने की बात नहीं है. और आगे हम देखते हैं कि वो उसका फिर फल उत्पन्न होता है. There is fruit coming up. उसका बाद में एक अच्छा सा फल आता है. तो वही कहानी के संबंधित जो है हमने ये जो इसमें मैं उसी को ध्यान कर रहा था. आई वॉज मेडिटेटिंग ऑन द सेम थिंग यू नो दैट दिस इज वॉट इज नीडेड टूडे. यही आज यू नो परमेश्वर चाहता है दैट हम लोग परमेश्वर से जन्मे हैं. गॉड हैज़ मेड अस एंड ही इज़ अ मेकर. उसने बनाया है. जैसा भजन संहिता लिखने वाला कहता है हाउ वंडरफुली एंड फियरफुली वी आर मेड. यू नो थैंकिंग गॉड दैट हाउ वी आर मेड, हाउ ब्लेसड वी आर मेड. कितना अच्छा से या कितना अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने मुझे बनाया है माता के गर्भ में, इन द वूम ऑफ माई मदर. वॉट डिड ही एक्सपेक्ट, क्या वो चाहता था, वॉट वॉज हिज एक्सपेक्टेशन, उसका चाहत क्या था. वो यही था कि हम उसके बह में चलें, उसके अनुग्रह में चलें, दैट वी वॉक इन हिज फियर, वी वॉक इन हिज लव. एंड एज अ सीड यू नो नॉट हैविंग सिन, इट्स वेरी नाइसली पुट देयर दैट ही कैनॉट कीप ऑन सिनिंग. ही कैनॉट कीप ऑन सिनिंग. हम पाप करते नहीं रहना है, करना ही नहीं है उस तरीके का एक जीवन, क्योंकि वी आर बॉर्न ऑफ गॉड, क्योंकि हम परमेश्वर से जन्मे हैं. एक सोचने की बात है. इट्स वेयर वी हैव टू थिंक एंड एग्जामिन. हम अपने आप को जांचें. आई हैव टू एग्जामिन माई लाइफ दैट हाउ इज दैट आई एम अबाइडिंग इन गॉड्स वर्ड. यहां पे बिकॉज इसके शुरुआत का वचन को हम पढ़ते हैं तो वहां पे ऐसा लिखा है दैट यू नो जिसने पाप को प्रैक्टिस किया है, हु प्रैक्टिस सिन वॉज द डेविल. शैतान ही था जिसने पाप का जो है उसने क्या पाप को जो प्रैक्टिस किया उसने, मतलब ही प्रैक्टिस सिन, तो वो शैतान ही है. और यहाँ पे आगे लिखा है कि devil has been sinning from the beginning. वो पहले से शुरुआत से ही पाप करता आ रहा है. और इस कारण the reason the son of God appeared was to destroy the work of devil. पाप जो शैतान का जो कार्य जो है उसको खत्म करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया. So it's really एक सोचने की बात है कि मेरे अंदर वो बीज किस तरीके से मैं उसको रखता हूँ, किस तरीके से मैं उसको संवरता हूँ. जैसे कि इसमें उदाहरण एक और एक दिया केन और एबल के बारे में भी. उसमें भी वहाँ पे हम देखते हैं अगर उत्पत्ति का चार में हम जब पढ़ते हैं व्हेन वी सी अबाउट केन एंड एबल आल्सो, देयर आल्सो गॉड इज टेलिंग केन को बोलता है पाप जो है द्वार के ऊपर खड़ा है. ये हमने लास्ट वीक हमारा जो कॉटेज मीटिंग था वहाँ पे उसको हमने देखा था कि किस प्रकार से पाप खड़ा है, छिपा है कहता है. आप अगर इसका 12 का जो वचन अगर हम पढ़ेंगे, इट इज़ जस्ट हाइडिंग कि कब मैं गिराऊं, व्हेन विल आई पुट यू डाउन, जस्ट वेटिंग एट द डोर आस्किंग दैट. इफ यू सी इन प्रोवर्ब्स 8 आठ का जो नीति वचन में हम पढ़ते हैं वहाँ पे ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का ही ज्ञान है, इट इज़ द विजडम ऑफ गॉड विच हेल्प्स अस टू हेट ईविल. वो ही परमेश्वर का ज्ञान एक ही है जो हमें उस पाप से घृणा करने के लिए मदद करती है. उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं. और जैसा जॉनी ने भी बताया कि पवित्र आत्मा का गवाही का बहुत ही ज़रूरत है. द फिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट वेरी मच रिक्वायर्ड बिकॉज उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सके. जिस तरीके से दाऊद प्यास के साथ मांगता है कि फिल मी, रिफ्रेश मी एवरी डे, रिन्यू मी विद द होली स्पिरिट, बिकॉज एवरी डे वी हैव अ न्यू स्ट्रगल, न्यू थिंग कमिंग अप एंड वी हैव टू फाइट ओवर इट. हर एक दिन हमारे लड़ाई एक नया लड़ाई है. परमेश्वर से मांगते रहे कि हमें उस पवित्र आत्मा का भरपूरी दे जिससे मैं उस पापों के साथ से उबर आऊँ, उस पाप ना करूँ. जैसे यह लिखा है कि दैट आई शुड नॉट सिन, आई शुड नॉट सिन, दैट शुड बी माई गोल. हमारा मेरा लक्ष्य यही होना है कि मुझे मैं पाप नहीं करूँ. और मैं अगर ये पाप ना करूँ तो मुझे परमेश्वर की वो पवित्र आत्मा का अगुवाई एंड द फिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट इज वेरी मच रिक्वायर्ड. नॉट कीपिंग आर रूम एम्प्टी, वैक्यूम, खाली ऐसा ही नहीं रखना है. एक न्यूट्रल विश्वासी के समान नहीं रहना है, लेकिन एक आत्मा की भरपूरी के साथ being filled with the Holy Spirit, you know, following and being clean in front of God's eyes. Parmeshwar in vachanon se hame aashish de. Lord lead us and bless us. Amen.
We heard that we should not be empty in our hearts.
और हमने सुना कि हम अपने हृदय खाली नहीं रखना है.
And that is something which I need to take heed to always.
और कुछ बातें हैं जिसको मुझे हमेशा उसके ऊपर मुझे ध्यान देना है.
The moment I am not having the fullness of God.
और जब तक मुझे वो परमेश्वर की भरपूरी नहीं है.
And that moment I am backsliding.
और उस समय जो है मैं पीछे गिर जाता हूँ या नीचे गिर जाता हूँ.
When I don't have the fullness of the Holy Spirit in my life.
और जब मेरे अंदर वो पवित्र आत्मा का भरपूरी नहीं है.
At that moment I have already started backsliding.
और उस समय से मैं गिरना चालू करता हूँ.
It is not when I fall into sin or I did something wrong. I should realize that I have fallen to sin.
और उस समय ने जब मैं पाप में गिर गया हूँ या कुछ मेरे साथ कुछ गलती होता है कि मैं पाप में गिर गया हूँ उस समय नहीं.
As soon as I don't have the fullness of God, I don't desire God and I don't have the love of God in my heart, I should know that I have started backsliding in my heart.
और जब मेरे अंदर वो परमेश्वर का या पवित्र आत्मा का भरपूरी नहीं है और परमेश्वर के लिए प्रेम नहीं है उस समय मुझे ये सोचना है कि मैं नीचे गिरना मेरा शुरुआत हो चुका है.
When Paul was speaking to the Colossians in Colossians chapter 1.
और जब पौलुस जो है कोलोसियों से बात करता था अपना कोलोसियों के पुस्तक में ये पहला अध्याय.
He says something like his prayer for the Colossians in chapter 1 verse 10 that so that you will walk in a manner worthy of the Lord. To please him in all respect, that's what. To please him in all respects.
और यहाँ पे हम यहाँ पे 10 में पढ़ते हैं कि हम परमेश्वर के धार्मिकता में चलते रहे उसको हमेशा उसको प्रसन्न करते हुए हम चलते रहे.
That should be the constant desire in my heart.
और ये एक लगातार एक इच्छा मेरे अंदर बना रहना है.
That I need to please God in all spheres of my life.
और पूरे मेरे जो मेरे मेरे जो जीवन में है मैं उसको उसको मुझे प्रसन्न करते रहना है.
I should not be someone who is just desiring somehow I to get minimum minimum marks so that I somehow qualify to enter kingdoms God's kingdom.
और इस तरीके का एक सोच मुझे मेरे अंदर नहीं रहना है कि थोड़ा सा मुझे मार्क्स मिले ताकि मैं परमेश्वर के राज के अंदर मैं प्रवेश कर सकूं.
But I need to aim to have a life which is pleasing God in every way, in every situation. That should be my aim and my motive of my life.
और मेरा लक्ष्य यही होना है कि हर एक तरीके से कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न करता रहूं.
In 2 Peter 1:10 it says.
दूसरा पत्रस 1:10 में हम देख सकते हैं.
Therefore, brethren, be all the more diligent to make your calling and choosing you certain about your calling and choosing you. For as long as you practice these things, you will never stumble. Verse 11 says, for in this way the entrance into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ will be abundantly supplied to you.
उसमें 10 और 11 में यही पढ़ते हैं उसका 11 का वचन वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाए गए हो.
इट्स लाइक गोइंग इनटू गॉड्स किंगडम विद फुल अबंडेंस लाइक नो डाउट और समहाउ स्क्रीपिंग थ्रू बट रियली कमिंग इनटू गॉड्स किंगडम विद ऑल एश्योरेंस एंड फुल जॉय एंड फुल कॉन्फिडेंस एंड नथिंग इन माय हाइड लाइफ इज हिडन. दैट्स हाउ आई नीड टू एम इट.
और हम जब परमेश्वर के राज में जाते हैं पूरे आनंद की भरपूरी के साथ पूरे खुशी के साथ जाए कोई तरीके से कोई बाधा के साथ नहीं लेकिन पूरे एक एक एक, एक अच्छा एक मन के साथ हम उसके अंदर प्रवेश करें.
आमीन.
आमीन.
आई वाज रियली ब्लेस्ड विद द चिल्ड्रन स्टोरी.
और जो बच्चों लोगों का जो कहानी जब जो था उस विषय के ऊपर बहुत ही आशीष पाया.
देयर वन पार्ट दैट वाज इंपॉर्टेंट यू नो दिस इज डेविड रिमूव्ड द वीड्स and watered the seed.
और वहाँ पे एक बात हमने देखा कि उसने जो वहाँ पे जो जंगली झाड़ों को निकाल करके फिर उसको पानी डाला.
See, removing the weeds, you know, just they don't come out. When they come out, they bring soil with it.
और क्योंकि जब हम जंगली झाड़ को जब निकालते हैं तो वो पूरा वो मिट्टी को लेकर के आता है. इतना आसान नहीं उसको निकालना.
So similarly in our lives also when we you know have this weeds, the sins in our life or the temptations in our life, removing it is painful.
और हमारे जीवन में भी जब ये जो पाप और जो जो टेम्पटेशन होता है उसको भी निकालना बहुत बहुत ही एक दर्दनाक है.
यू नो बट एंड इट सेज ही वाटर्ड After removing the weeds, he watered it. You know, watered it with the word of God.
और फिर हम उस चित्र में ये देखा कि उसने उस जंगली झाड़ को निकाल करके उसमें पानी उसने डाला।
So watering is a part where you know, God comes in, you know, in our lives, where He, you know, takes care of us. He, you know, heals us.
और ये एक ऐसा चित्र है कि जहाँ पे परमेश्वर आता है और वो पानी डालता है, वो हमें वो चंगाई देता है।
That's how you know, when the weeds are not, then the you know, plant grows.
और जब उस जंगली जो पेड़ निकलने के बाद ही वो जो 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 पेड़ है वो बढ़ने लगता है।
God also helps us in that way, you know, that all these weeds in our life, that things that come in between us and God, be removed in our life.
वो जंगली जो विष झाड़ जो हमारे और परमेश्वर के बीच में आता है, उसको निकालना है।
Second thing is, you know, Johnny was sharing about Peter.
और पत्रस के बारे में भाई जॉनी ने
He was sharing about like Peter was a fun guy who said nothing will come, I'll be there and nobody will take you away.
और जहाँ पे पत्रस बहुत ही इससे कहता है कि मैं रहूँगा और कोई आपको नहीं लेके जाएगा।
And the next day, you know, he is there, he's denying and saying, I don't know this man.
और फिर दूसरे दिन हम देखते हैं पत्रस बोलता है कि मैं उस प्रभु यीशु मसीह को पहचानता ही नहीं।
But one point when Jesus comes and tells him, he asks him, you know, Peter, do you love me?
और एक ऐसा एक समय आता है जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह पत्रस के पास आता है और कहता है कि पत्रस क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो?
And he says, no, I love you, God. I love you, Jesus, you know?
और वो कहता है कि हाँ प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ।
Second time also he asks the same thing, you know, like, you know, Peter, do you love me?
और दूसरी बार भी प्रभु यीशु मसीह पत्रस से पूछता है तो वो पूछता है पत्रस से क्या आप मुझसे प्रेम करते हो?
Third time he asks him.
और फिर तीसरे बार पूछता
है। But the point where Peter comes and says, God, you know everything.
और फिर एक ऐसा मोड़ पर पत्रस पहुंच जाता है और कहता है प्रभु यीशु मसीह से, प्रभु आप जानते हो।
That there is nothing hidden from you. You know what I was. You know what I did. I denied you, but you know everything. You know my heart.
और वो ये कहा कि आप प्रभु आप मुझे जानते हो कि मैंने क्या किया है और कैसे मैंने 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 तुम्हें नहीं पहचाना और आप जो जो कार्य मैंने किया है वो आप जानते हो।
God broke him at that time and brought him to humility.
और वहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर उसको उसके मन को वहाँ पे तोड़ता है और एक नम्रता में उसको खड़ा करता है।
And after that, the work started in Peter.
और उसके बाद उस पत्रस के जीवन में हम देखते हैं कि कार्य शुरुआत हुआ।
And then there was the day of Pentecost when they were anointed with the Holy Spirit.
और फिर हम देखते हैं कि पेंटेकोस्ट के दिन में फिर पवित्र आत्मा आता है।
And then the Spirit guided him and he did the work as God told him to do.
और जैसे पवित्र आत्मा आने के बाद फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर का कार्य को ले चलता है और परमेश्वर का कार्य करता है।
So there's a point where you know we have to come to a place where God breaks us and we come to that humble state.
और एक ऐसा एक स्थिति में मुझे आना है जहाँ पे परमेश्वर मुझे तोड़ता है और एक और दीनता में मुझे वो अनुभव करना है, दीन रूप में आना है।
Where I know like I on my own can't survive, God, you know me, everything about me and you know, you can help me in
और जब मैं कहता हूँ कि मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता हूँ प्रभु, सिर्फ तुम आप ही मेरे जीवन में कुछ कर सकते हो।
एंड दैट इज द पॉइंट वेयर गॉड अनॉइंट्स अस विद द होली स्पिरिट दैट ही विल स्ट्रेंथन अस, ही विल मेक अस, ही विल हेल्प अस टू बी लाइक हिम।
और उस स्थिति में परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से अभिषेक करता है और हमें ताकत देता है और हमें चलाता है।
सो गॉड आल्सो हेल्प अस दैट वी कम टू दैट हंबल स्टेट एवरी टाइम इन आवर लाइफ। सी इट डजंट मीन लाइक यू नो वी अनॉइंट टू द होली स्पिरिट We don't make mistakes. We make mistakes after that also. Even after anointing of the Holy Spirit, we make mistakes also. You can see in life of Peter also.
और हमें वो दीन मन में आना है और जब पवित्र आत्मा हम पाते हैं तब उसके बाद भी हम गलती करते हैं।
But we remain with that humble state always. He reminds the Holy Spirit reminds us where we are wrong and where we should be corrected.
क्योंकि पवित्र आत्मा जो है हमें दिखाता है और कहाँ पे हम गलत हैं।
And there we have to change our lives.
और वहाँ पे जाकर के हमारे जीवन को हमें बदलना है।
That Holy Spirit keeps watering the seed.
और पवित्र आत्मा जो है उस बीज के ऊपर पानी डालता है।
Then we get the fruit of life.
और फिर हमें वो जीवन का वो फल हम उत्पन्न करते हैं।
And it's the life of Christ is not it's not you know like. Acted, but it comes out naturally.
और जो प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन है वो दिखावा नहीं है, वो हमारे जीवन से बाहर आना है, बाहर निकलना है।
Telling a lie, you know, it's natural. I won't tell a lie.
और झूठ बोलना जो है हम देखते हैं स्वाभाविक तरीके से कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा।
Forgiving is become a natural way of life.
और क्षमा करना भी एक स्वाभाविक तरीके से हम उसको क्षमा करते हैं।
No patience. That comes, you know, something is, you be patient. That's the life of Christ.
और जो धीरज जो है वो जो है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलता है.
And the best of all is anger. You know, Jesus got angry, but angry in the sense where God's name was, where in the temple where doing business and all those things. But when it came to him personal life, he was never angry.
हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो क्रोधित हुआ, लेकिन वो कहाँ पे जब मंदिर में जब व्यापार होने लगा तभी. लेकिन अगर उसकी व्यक्तिगत जीवन में हम देखते हैं कभी वो क्रोधित नहीं हुआ.
Till the day he went to cross, the last thing was he asked for forgiveness from others.
और जब क्रूस के ऊपर भी वो चढ़ाया गया था, वहां पे भी हम देखते हैं कि दूसरे से उसने पाप क्षमा मांगा.
That is life of Christ.
वो प्रभु यीशु मसीह का जीवन है.
And Jesus says, you will have more than this, what I'm doing now. You will do more things than these.
और प्रभु यीशु मसीह ने बताया जो प्रभु यीशु मसीह जो कार्य के उससे भी अधिक हम लोग करेंगे करके वो आशीष दिया.
So God has promised us we can be like same like Jesus. We can really be like just like him.
और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने वायदा दिया कि हम उसके जैसे हम बनेंगे.
So let's claim that promise like God you said I can have.
और जैसे कि वो वायदा दिया, हम उस वायदा को पकड़ रखें.
I take it with faith.
और विश्वास के साथ वो वायदा को लें.
And really pray that God will every day do a work in our lives.
और हर एक दिन परमेश्वर हमारी सहायता करे हमारे जीवन के ऊपर काम करने के.
God really blesses.